एक आईपीओ के आईपीओ न रहने की अजब कहानी। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के स्टॉक की डीलिस्टिंग पर एक दिलचस्प छोटा सा ड्रामा हुआ। इस डीलिस्टिंग को संस्थागत शेयरधारकों ने बहुमत से मंजूरी दे दी थी, लेकिन अधिकांश गैर संस्थागत शेयरधारकों ने इनके खिलाफ वोटिंग की थी। चूंकि स्टॉक में संस्थागत शेयरधारकों का हिस्सा बाद वालों के मुकाबले बहुत बड़ा था, इसलिए प्रस्ताव पास हो गया। डीलिस्टिंग के बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को वापस उसके मूल आईसीआईसीआई बैंक में विलय कर दिया जाएगा। हाई प्रोफाइल कॉरपोरेट ब्रांड से जुड़ी डीलिस्टिंग काफी दुर्लभ होती है और आमतौर पर यह शांत सा मामला होता है। हालांकि आईसीआईसीआई डीलिस्टिंग कुछ गलत वजहों से खबर में आ गई। एक्स यानी ट्विटर पर बहुत शोर था। लोगों ने शिकायत की कि बैंक कर्मचारी उन पर डीलिस्टिंग के लिए वोट करने का दबाव डाल रहे थे। ये शिकायतें सही लगती हैं। कई असली नाम खातों से थे और उनके पास सही तरह का विवरण भी था, जिसमें शिकायतें भी शामिल थीं कि बैंक रिलेशनशिप मैनेजर स्क्रीनशॉट के तौर पर सबूत मांग रहे थे कि शेयर धारकों ने असल में उस तरीके से मतदान किया था जिस तरह से उन्हें करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अगर ये आरोप सही हैं, तो ये कुछ परेशान करने वाले सवाल खड़े करते हैं। ऐसे काम के बुनियादी तौर पर गलत होने के अलावा बैंक ब्रांच के कर्मचारियों को अपने ग्राहकों की स्टॉक होल्डिंग के बारे में कैसे पता चलेगा? ये जानकारी उन्हें किसने दी? इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि एक बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर किसी तरह के दबाव के बिना कभी कुछ नहीं करेगा। डीलिस्टिंग के लिए वोट देने की ये धमकियां किन्हीं निजी कारणों से नहीं दी गई होंगी, बल्कि शायद पहले से तय और इंसेंटिव मिलने वाले प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। शेयर होल्डर की ऑटोनॉमी कॉरपोरेट गवर्नेंस की बुनियाद है और इसे बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि रेगुलेटर इस मामले में क्या करता है। अच्छा, मुझे कहना होगा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज स्टॉक कुछ हद तक एक्सीडेंट की संभावना वाले रहे हैं। करीब 6 साल पहले आईपीओ के समय इश्यू फेल हो रहा था और आखिरी दिन आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने आईपीओ को बचाने के लिए अपने 5 फंड से बड़ा निवेश किया था। सेबी ने फंड निवेशकों के पैसे के इस इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और फंड हाउस को उन स्कीमों को 15% ब्याज के साथ 240 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया। जिन्होंने आईपीओ में निवेश किया था, कुछ जुर्माना भी था जो फंड के सीनियर अधिकारियों को देना पड़ा था। तो सिर्फ 6 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक इस कंपनी को बंद करने के लिए नियमों की खींचतान कर रहा था और अब वे उसे उलटने के लिए बेतहाशा जुगत में लगे थे। सच में भारतीय कॉरपोरेट इतिहास का ये एक अजीबोगरीब किस्सा है। हालांकि इसका कारण तलाशना मुश्किल नहीं है। इस दौरान ब्रोकरेज का बिजनेस पैसा बनाने का बिजनेस बन गया है। इसके अलावा भारतीय शेयर बाजारों की गतिविधि जिस दिशा में जा रही है, उसे देखते हुए ये और ज्यादा फायदेमंद होता दिख रहा है। बेशक गतिविधि से मेरा मतलब डेरिवेटिव में बड़ी मात्रा में की जा रही सट्टेबाजी है। ये एक बढ़ता हुआ बिजनेस है और केवल सामान्य स्तर से नहीं बढ़ रहा है। भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग की विस्फोटक बढ़ोतरी अभूतपूर्व रही है। केवल 1 दशक में ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट का नंबर करीब 1 बिलियन से बढ़कर 85.3 बिलियन हो गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट की गिनती इसके असर को सही तौर पर नहीं दिखाती है, लेकिन ये उस उन्माद को जरूर उजागर करती है जिसने बाजार को जकड़ लिया है। अच्छा, दुख की बात है कि इन ट्रेडरों का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी तौर पर चलने वाले लंबे समय के निवेश के महत्व को नजरअंदाज करता है और मानता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग ही शेयर बाजार का सार है। पिछले साल की एक प्रसिद्ध सेबी स्टडी से ये गंभीर असलियत सामने आई कि 90% से ज्यादा डेरिवेटिव ट्रेडरों को घाटा हुआ, जो निवेश के इस सट्टे वाले रवैये से जुड़े रिस्क को देखता है। अच्छा, मेरा मानना है कि ये पूरा प्रकरण हर पहलू से एक सतर्क करने वाली कहानी का काम करता है। ये ध्यान खींचता है मजबूत कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, शेयर होल्डरों की ऑटोनॉमी पे, निवेश करने वाले ऐसे लोगों की अहमियत पर जो निवेश के बुनियादी सिद्धांतों पर लंबी अवधि का निवेश करें। जैसे जैसे भारतीय शेयर बाजार लगातार विकसित हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि रेगुलेटर, बाजार से जुड़े लोग और निवेशक पारदर्शी, निष्पक्ष और स्वस्थ निवेश संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें, ताकि सट्टेबाजी के ऊपर स्थायी विकास को प्राथमिकता मिल सके। पर क्या सचमुच ऐसा होगा? खैर, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए मैं उतना आशावान नहीं हूं। ये पॉडकास्ट धीरेंद्र कुमार के कॉलम फर्स्ट पेज से लिया गया है। बचत और निवेश पर दूसरे आर्टिकल्स के लिए आप धनक.com पर लॉगिन कर सकते हैं।